अब प्रस्तुत है साई का प्यार जीवन आधार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम श्रीमती अनामिका अरविंद जी के अनुभवों से परिपूर्ण भेंट वार्ता सुनेंगे। भगवान बाबा की विद्यार्थी बन पाने के दुर्लभतम अवसर से अनुग्रहित अनामिका जी से इस वार्तालाप में मुखातिब हैं टीम रेडियो साई की सदस्या श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी, जो स्वयं भी स्वामी की पूर्व छात्रा रही हैं।
ओम श्री साई राम। रेडियो साई के प्रिय श्रोताओं को साई राम। आज हमारी अतिथि अनामिका अरविंद हैं। अनामिका दिल्ली में पैदा हुई हैं। ये स्वामी की छात्रा रह चुकी हैं। फिलहाल ये हैदराबाद में एक प्राइवेट चैनल में रेडियो जॉकी कम प्रोग्रामिंग कंट्रोलर के रूप में काम कर रही हैं। अनामिका एक बाल विकास गुरु रह चुकी हैं और अभी श्री सत्य साई सेवा समिति हैदराबाद में एक युवा सदस्य की तरह भाग लेती हैं। साई राम अनामिका, रेडियो साई में आपका स्वागत है।
साई राम
अनामिका, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपके जीवन में भगवान बाबा कब, कैसे और क्यों बसे?
सच बोलते तो कौन से साल में हम लोग भगवान के डिवोटीज बने, ये तो मुझे भी याद नहीं है, पर मुझे इतने याद है कि मेरे जो पापा थे वो एयरफोर्स में काम करते थे और डिफेंस में रहने के कारण उनको देश के प्रति लगाव तो बहुत ज़्यादा था ही, पर पापा भजन वजन पूजा पाठ इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक बार घर में ऐसी मम्मी को किसी ने फोटो दी थी स्वामी की, तो वो फोटो मम्मी ला के घर में मम्मी ने ऐसी रखी और पूजा करना शुरू किया।
किस जगह था ये?
ये आई थिंक दिल्ली में गाजियाबाद या अम्बाला, हम लोग नॉर्थ की तरफ ही थे, मुझे ठीक से याद नहीं है।
तो वहाँ पे बहुत छोटी रही होंगी।
बिल्कुल छोटी, तब तो शायद मैं मेरे जस्ट पैदा होने के कुछ महीने पहले की बात है ये।
अच्छा।
तो क्योंकि हमारे एयरफोर्स में ट्रांसफर्स होते रहते तो ये भी याद नहीं है कि उस टाइम पे हमारी पोस्टिंग कहाँ पे थी, बट मतलब नॉर्थ में हम लोग थे। तो जब मम्मी ने स्वामी की वो फोटो लाई और मम्मी ने घर में रखी वो फोटो, तो देख के डैडी बोले ये सब क्या है, किसकी फोटो लेके आ गई हो, क्या पूजा कर रही हो? तब मम्मी ने कहा कि नहीं ये भगवान बाबा हैं। तो डैडी का बिल्कुल विश्वास नहीं था, डैडी ने बोला ये सब नौटंकी, घर में नहीं चलेगी, निकाल दो फोटो घर में। डैडी मतलब विश्वास ही नहीं करते थे कि किसी पत्थर की मूर्ति को ला के तुम कोई पूजा वूजा करते हो, पाठ वाठ करते हो और वो भगवान मानते हो, तो इन सब चीज़ों पर उनको विश्वास नहीं था। तो वो चैप्टर वहाँ एंड हुआ। कुछ दिनों बाद पापा का ट्रांसफ़र आया, तो एयरफोर्स में क्या होता है जब ट्रांसफ़र होता है तो जाने के पहले स्पेशली क्योंकि टेक्निकल एरिया में पापा काम करते थे तो सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब हैंडओवर करके जाना होता है। पर कुछ चीज़ उस कुछ आइटम मुझे ठीक से वो भी याद नहीं है, पर कुछ आइटम मिसिंग था जिसके चलते ट्रांसफ़र मतलब रुकने का चांस था। और यदि वो हैंडओवर नहीं करते तो एयरफोर्स में कोर्ट मार्शल हो जाते हैं, जो पनिशमेंट कहते हैं,
बहुत ही सीवियर होता है वो। तो
बिल्कुल मतलब एक एयरफोर्स में काम करने वाले की ज़िंदगी में यदि कोर्ट मार्शल हुआ मतलब बहुत ही बड़ा काला धब्बा है वो अपने करियर में। तो अब पापा को समझ ही नहीं आया कि क्या करें, तो बहुत ही परेशान थे और रिलीविंग ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे उस समय। उस एफएस कैंपस में ही चलते चलते शाम को जब जा रहे थे मम्मी और पापा, तो वहाँ पे किसी के घर में भजन की आवाज़ सुनाई दी और साई भजन चल रहे थे। तो पापा ने मम्मी को बोला ये भजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं चलते हैं। मम्मी को एकदम से आश्चर्य लगा, अब तक तो घर में भगवान की फ़ोटो नहीं रखने देते थे और भजन चलते हैं। मम्मी ने बोला कौन, हमको परिचय भी नहीं है, ऐसे कैसे जाएंगे किसी के घर, ऐसे कैसे जाके बैठ सकते हैं? तो पापा ने बोला कोई बात नहीं तुम चलो मेरे साथ, और गए। ना उनका नाम मालूम था ना कुछ मालूम था, बस जाके बैठ गए भजन के लिए। और भजन के बाद जो उन लोगों ने विभूति बांटी वो विभूति लेके घर आए, और पता नहीं डैडी को एक तसल्ली सी थी कि हाँ अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वैसा ही हुआ, अगले दिन कोई नए पर्सन जो ट्रांसफ़र होकर आए थे उन्होंने बोला मिस्टर राव आप जा सकते हैं, मैं ये केस टेक ओवर करता हूँ, तुम वरी मत करो। बिल्कुल भी नया आदमी था जो आए थे, एंड उन लोगों ने वो केस टेक ओवर किया और वहाँ से डैडी को मतलब ट्रांसफ़र मिल गया और डैडी फिर दिल्ली आना हुआ। उसके बाद मैं पैदा हुई थी, तो तब तक पेरेंट्स ऑलरेडी डिवोटी बन चुके थे।
अच्छा, आपके पैदा होने से पहले ही? और एक भजन के बाद ही इतना बदलाव आ गया?
बिल्कुल, सिर्फ वो विभूति घर लेके आए, उसके बाद जब घर में फिर फोटो वोटो का परमिशन मिला और मम्मी ने फिर फोटो वोटो लगाई, बाद में विभूति आना या हनी ये सब आना, शहद का आना, ये सब देखा डैडी ने, तो फिर उसके बाद मतलब विश्वास जो है दो गुना और बढ़ गया।
आपकी शिक्षा स्वामी के स्कूल में हुई है प्रशांति निलयम में, आप हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए जब आप एक विद्यार्थी थी उनके स्कूल में।
मैं एक्चुअली बचपन में स्वामी के स्कूल ज्वाइन करने के पहले ना बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी, मतलब मेरी मुर्गी की एक टांग, इतनी जिद्दी थी। तो कोई भी कुछ भी कह दे मुझे किसी की बात नहीं सुनना है, अपना ही वो सुनना है। फिर जब मैं यहाँ आई स्वामी के स्कूल में जब ज्वाइन हुई तो यहाँ पे जो स्कूल का वातावरण था मुझे इतना भाया, इतना अच्छा लगा और मुझे लगता था कि किसी भी तरह मुझे यहाँ पे एंट्रेंस मिलना चाहिए। और जब मैंने टेस्ट भी लिखा था तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे सीट मिलेगी। और पहली बार मैंने ज़िंदगी में कष्ट करके पढ़ाई की, मतलब वरना मैं स्कूल में भी ना पास हो जाती थी, इसलिए मुझे हार्डवर्क करना, पढ़ाई करना या कभी भी फर्स्ट आना ये सब कभी मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। बस खेलते रहो, कल्चरल एक्टिविटीज़ करो, इन सब पे ज़्यादा मतलब मेरे को इंटरेस्ट था। लेकिन जब मुझे पता चला कि एंट्रेंस लिखना है तब ज़िंदगी में पहली बार थोड़ा बहुत मैंने कष्ट किया, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा। हालांकि बहुत अच्छा नहीं लिखा था। और उसने एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं प्रशांति निलयम जब गई भजन के लिए बैठी थी, मेरे सामने और एक लड़की बैठी थी जिसने मेरे साथ ही सेम क्लास का एग्ज़ाम लिखा था। तो मैंने उसको पूछा तुमने कैसे लिखा एग्ज़ाम, क्या तुम्हें सीट मिल जाएगी स्वामी के स्कूल में? वो बोली बिल्कुल मुझे तो पक्का मिलेगा सीट, मैंने बहुत अच्छा लिखा एग्ज़ाम। उस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको मिल जाएगा। तो जब वो भजन करी थी मैंने ना उसकी ड्रेस साइड से जाके हल्का सा छुआ, सिर्फ ये फीलिंग होने के लिए कि स्वामी मैंने आपके स्टूडेंट की ड्रेस छू ली। मुझे वो एक बस एक चांस मिल जाए कि मैं स्वामी के स्टूडेंट को छू पाऊँ करके मैंने उसकी जब ड्रेस छुई तो मुझे बस तसल्ली मिल गई कि अब मुझे सीट मिले ना मिले मैंने स्वामी के स्टूडेंट की ड्रेस छुई है। और शायद स्वामी को ये बात भा गई, अब पता नहीं क्या। उसके बाद जब मुझे सीट मिली उसके बाद फिर मैं बहुत खुश थी। या वहाँ से तो एक जर्नी था जो है डिसिप्लिन, सुबह उठना, फिर टाइम पे बेल होते ही नहाना, बेल होते ही असेंबली चले जाना, बेल होते ही खाना खाने चले जाना, बेल होते ही फिर दर्शन के लिए जाना। इतना जो रूटीन था इसके चलते ना अनुशासन जब हमारी ज़िंदगी का एक भाग हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइफ भी काफ़ी सुधर जाती है। उस तरह मैं भी स्वामी के डिस्कोर्स सुनते 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 ज़िद्दी रहने से कुछ काम नहीं होता है, विनम्रता ही सब कुछ है करके मैंने भी फिर बहुत कुछ फिर स्वामी के स्कूल में सीखा।
काफ़ी परिवर्तन आया होगा आपके स्वभाव में।
बिल्कुल, घर वाले तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये वही अनामिका है जो इतनी ज़िद्दी थी, सबसे आर्ग्यूमेंट करती रहती थी। और अब ऐसा होता है कि यदि कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट शुरू होता है मैं सबसे पहले उस जगह से दूर चली जाती हूँ, मतलब उस जगह पर नहीं रहती, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता कि क्यों किसी चीज़ के लिए कोई लड़ सकता है, ऐसा लगता है मैं निकल जाती हूँ वहाँ से।
और कोई स्कूल के दिनों का कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहें?
स्कूल में जब हम थे तो स्वामी जो है हमारे क्लासमेट्स के साथ, हम सबके साथ जब बात करते थे तो स्वामी पूछते थे इडली खाया, कितना खाया, बड़ा खाया, छोटा खाया, ये पूरा मतलब स्वामी
एक एक बात का ध्यान।
बिल्कुल, शायद मैं तो घर वाले भी उतना ध्यान नहीं रखते कि समय पे खाए नहीं खाए, क्योंकि कॉलेज के लिए जब मैं हैदराबाद आई तो मुझे लगता था कि मैं खाई या नहीं खाई किसी को मतलब अब कोई पूछने वाले नहीं है। और हॉस्टल में इधर एक तरफ स्वामी पूछते थे, एक तरफ प्रिंसिपल, वार्डन, सब लोग कि खाओ खाओ खाओ, ऐसा लगता था अब तो कोई खाए या नहीं खाए पूछने वाले नहीं है। तो ये बहुत मुझे खलता था जब मैं बाहर आ गई। तो स्कूल में तो ये पैम्परिंग स्वामी की बहुत थी।
वही तो कहते हैं भगवान 1000 माँ के समान है।
बिल्कुल, 1000 के समान उतना प्यार तो फिर कभी नहीं मिला। फिर स्पोर्ट्स मीट जैसे हम लोग को स्वामी के सामने परफॉर्म करने करके हम लोग रात रात जग के जो परफॉर्म करते थे, फिर सडनली स्वामी आके देखते थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले स्वामी आके देखते थे कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है, फिर स्वामी बताते थे कि ऐसा करो या वैसा करो। तो कौन रात रात को आके प्रैक्टिस पहले से ही देख के, कोई चांसलर आके किसी यूनिवर्सिटी का पहले से देख के कोई एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो बच्चों के लिए, ऐसा करो, फिर हमारे लिए खाने के लिए विटामिंस या ग्लूकोज या बिस्किट्स भेजना, चॉकलेट्स भेजना, आइसक्रीम्स भेजना, इतना भेजते थे स्वामी। और जो आम जिस प्रकार स्वामी भेजते थे वो तो आज ज़िंदगी में कभी खाए ही नहीं बाहर आने के बाद। और इतनी मोटी थी मैं जब मैं स्कूल में थी ना, तो सब लोग मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, सब लोग बोलते थे कि तुम्हारी छोटी बहनें क्या कर रही हैं। मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन देखने में सब मैं इतनी मोटी मोटी थी कि सब लोग सोचते थे कि सबसे बड़ी मैं। और वही बाहर आते कि पूरी हड्डी पसली सब एक सब निकल गया।
तो स्वामी का प्यार तो इतना,
बिल्कुल वो प्यार तो कोई और दे ही नहीं सकता।
अनामिका जी, फिलहाल आप हैदराबाद में रहती हैं, आप वहाँ क्या कर रही हैं और जो साई शिक्षा आपने प्राप्त की है इसे आप अपने काम में कैसे लेकर आती हैं?
फिलहाल तो मैं एक प्राइवेट रेडियो चैनल में काम करती हूँ, मैं रेडियो जॉकी कम प्रोग्रामिंग कंट्रोलर की तरह काम कर रही हूँ। और जैसे आपने पूछा कि आप साई शिक्षा को किस तरह अपने कार्य में शामिल करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ पे जो हमको काम आता है वो टक्कर खाता है, कई बार ऐसा होता है। हम लोग जो है ना अपने शो के बाद हमको कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आवाज़ भी देनी पड़ती है। तो मुझे ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला गया कि तुम ये आवाज़ देना है, पर उस दिन जो प्रोडक्ट था जिसके लिए आवाज़ देनी थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस प्रोडक्ट के लिए आवाज़ देने के लिए। तो मैंने देखा और मैंने उस साउंड इंजीनियर को बोला कि देखिए मैं ये नहीं दे सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, किसी और की आवाज़ ले लो। पर उस दिन पता नहीं कोई नहीं थे ऑफिस में, तो उनको चाहिए था कि मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरी ही आवाज़ लेनी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अनामिका तुम्हें करना ही है। तो मैंने बोला नहीं कुछ भी हो जाए मेरे बस की बात नहीं है, तो मुझे बॉस को बोलना पड़ेगा कि तुम नहीं कर रही। तो मैंने बोला प्लीज़ गो अहेड, आप बॉस को बोल दीजिए कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। फिर उन लोग गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है। तो मेरे बॉस आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है अनामिका, तुम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने बोला सर आप रीज़न पूछेंगे तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे मेरे प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते हैं ये करने के लिए, इसलिए मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है। यदि आप आवाज़ देने के लिए बोलेंगे तो भी मैं उसके लिए जो सूटेबल आवाज़ है, जो मॉड्यूलेशन है, वो नहीं दे पाऊँगी। तो फिर उन्होंने एक बार सोचा, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट देखी, बोले कि यदि हम स्क्रिप्ट चेंज करके दे देंगे तब तुम दोगी। तो मैंने बोला सर स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम है, मैं नहीं दे सकती। फिर फाइनली मैंने नहीं दी आवाज़, और उसके बाद उन्होंने किसी और को बुलाया, दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया, और वो काम ख़त्म करवाया। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जाएगा तो जाएगा, लेकिन यदि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। लेकिन इस टाइम पे पता लगता है कि स्वामी हमारे साथ हैं। मेरे बॉस को भी समझ में आया कि कुछ चीज़ें यदि किसी को कम्फर्टेबल नहीं लगती तो ज़बरदस्ती उनसे नहीं करवाना चाहिए, और कभी भी मतलब उस विषय को लेकर मुझे ब्लैक मार्क आना या मेरे करियर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आना करके कभी भी कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट मुझे फिर भी प्रमोशन मिला। तो ऐसा है कि जब भी हम स्वामी की कही हुई बातों को फॉलो करते हैं तो कभी भी हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक चीज मैंने सीखी।
अगर आप सही काम करोगे तो भगवान, सारा संसार आपके साथ है।
बिल्कुल उसी तरह उनकी अनुभूति तो मतलब क्षण क्षण मुझे महसूस होती है।
यहाँ आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे भी बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।
साई राम।
साई राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा की विद्यार्थी रही हैदराबाद निवासी श्रीमती अनामिका अरविंद जी के अनुभव सुने। उनसे वार्तालाप कर रही थी श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी, जो टीम रेडियो साई की प्रमुख सदस्या हैं।